आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। ओमिक्रॉन प्रकोप में सरकारी रवैये को लेकर प्रधानमंत्री घेरे में। भारत ने स्थाई की वायुसेना में महिलाओं की जगह। और NFL दिग्गज टॉम ब्रेडी लेंगे रिटायरमेंट। और अब खबरें विस्तार से। एज केयर व्यवस्थाओं में करीब 566 लोग मौजूदा कोरोना प्रकोप में अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ओमिक्रॉन लहर को संभालने में सरकार की नाकामी को लेकर कड़ी निंदा झेल रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स में 11,000 एज केयर निवासी कोरोना की चपेट में है, जबकि 10 में से केवल एक एज केयर निवासी को ही बूस्टर खुराक प्राप्त है। पर श्री मॉरिसन का कहना है कि कई लोग जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गवाई, वे पहले ही अपने अंतिम दिनों की देखभाल पा रहे थे।
They are in palliative care. And the balance also had, as you'd expect for people at that advanced age, had many other medical decisions. And yes, when they passed away, yes, they did have COVID. But they also had many other health issues that they were battling with. And every life that is lost is a great sadness. But every life that is saved is a great blessing.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने राज्य की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन और एक वरिष्ठ फेडरल मंत्री के बीच प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विषय में कथित रूप से साझा हुए अपमानजनक संदेशों पर अपनी राय व्यक्त की है। इन संदेशों में प्रधानमंत्री को कथित तौर पर खराब, बहुत खराब इंसान कहा गया है। पर श्री डोमिनिक पेरोटे ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों के सामने आना ऑस्ट्रेलियाई राजनीति और मीडिया के लिए एक काला दिन है।
To have news now reported from unsubstantiated text messages, I think is terrible. We should be asking the Prime Minister about policy.
सुश्री बेरेजिक्लिन का कहना है कि उन्हें ऐसे कोई संदेश याद नहीं है और यह कि उनका पूर्ण समर्थन प्रधानमंत्री के साथ है। न्यू साउथ वेल्स में आज 27 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में आज 11,807 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। अस्पताल में अगर भर्तियों की बात करें तो 2,622 लोग कोरोना के चलते अस्पताल में हैं, जिनमें से 170 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं विक्टोरिया ने आज 25 कोरोना संबंधी मृत्यु और 14,533 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 768 लोग बीमारी के चलते अस्पताल में हैं और 99 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं तस्मानिया ने 666 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं और राज्य में 13 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। क्वींसलैंड में प्रशासनिक अधिकारी अभिभावकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल के नए सत्र शुरू होने से पहले कोरोना रोधी टीके अवश्य लगवाएं। यह तब आता है जब राज्य में 16 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा जो पहले से बीमार भी था शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री विट डात का कहना है कि 12 से 15 साल के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का दर 68% से भी कम होना एक चिंता का विषय है।
This is too low. These kids are going to be going back to school. The teenagers are going back to school. There is no reason whatsoever, considering that our adult population is 92% first dose, there is no reason why your children's vaccination rates shouldn't be at the same rate.
ब्रिस्बेन का एक क्रिश्चियन कॉलेज अपनी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवादों में घिर गया है। क्वींसलैंड की एक शैक्षिक अधिकारी समिति अब मामले की जांच कर रही है। सिटी पॉइंट क्रिश्चियन कॉलेज ने अभिभावकों से एक नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि कॉलेज छात्र की लैंगिक पहचान या यौन सक्रियता के आधार पर उनका प्रवेश रद्द कर सकता है। अभिभावकों के पास कथित रूप से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए एक हफ्ता है। कॉलेज के इस कदम को खुले तौर पर समलैंगिक और तीसरे लिंग के विरुद्ध भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। कुछ वकीलों का कहना है कि कॉलेज भेदभाव विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। राज्य शिक्षा मंत्री ग्रेस ग्रेस का कहना है कि यह मामला अब नॉन स्टेट स्कूल्स एक्रेडिशन बोर्ड के पास जाँच के लिए भेज दिया गया है। SBS न्यूज के पास आई कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रति के अनुसार कॉलेज का मानना है कि किसी भी प्रकार की यौन अनैतिकता पाप है। इस सूची में गे, बाइसेक्सुअल, साथी के साथ धोखा जैसी कृत्य जोड़े गए हैं। एक नए शोध के अनुसार 80% ऑस्ट्रेलियाई उन लोगों के लिए परमानेंट रेसिडेंसी का समर्थन करते हैं जो कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। 1000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 78% सर्वेक्षण लेने वालों का मानना है कि वे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी हैं, सालों से यहीं रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को स्थायित्व देना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को सुनियोजित कर सकें। इस सर्वेक्षण को शुरू करने वाले ह्यूमन राइट्स लॉ सेंटर के कानून निदेशक डेविड बर्क का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रवासी योजनाओं का तालमेल खो चुका है।
As a country, we have absolutely lost our way when it comes to immigration. We have seen the highly publicized toxic political rhetoric when it comes to refugees. But I don't think that there is the same level of public understanding about what's happening with our immigration policies as a whole. We need an immigration system that actually treats people as people and that doesn't view them as simply tools for short-term labour. And I think these results show that the Australian community agrees with that.
और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसराइल को आश्वासन दिया है कि वे उनका सच्चा दोस्त बना रहेगा। यह तब आता है जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर पैलेस्टीनी नागरिकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से आई एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसराइल एक ऐसी प्रणाली अपना रहा है जिससे पैलेस्टीनी लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की परिस्थिति बन गई है। इस प्रक्रिया में पलस्टीनी मूल के लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना, गैरकानूनी हत्याएं और नागरिकता ना देने जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसराइल ने इस रिपोर्ट को यहूदी विरोधी बताया है। श्री मॉरिसन ने आज सुबह प्रेस वार्ता में इस पर अपने विचार प्रकट किए।
No country is perfect and there are criticisms made of all countries. But I can assure you that Australia and my government in particular will remain a staunch friend of Israel.
फाइजर ने अमेरिका से मांग की है कि वे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 2 अतिरिक्त कम क्षमता वाली कोरोना रोधी टीके की खुराकों को मंजूरी दे दें। इसका अर्थ यह है कि 6 महीने से छोटे बच्चों माफ कीजिएगा इसका अर्थ यह है कि 6 महीने तक के बच्चों को भी मार्च किट से टीके प्राप्त हो सकेंगे। अगर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA इस टीके को मंजूरी देता है तो यह वयस्कों के टीके से माफ कीजिएगा ये वयस्कों के टीके से 1/10 की क्षमता का टीका रहेगा। बाल संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शॉन ओलियरी का कहना है कि इस मंजूरी से तीसरी खुराक का रास्ता भी खुल सकेगा।
With this emergency use authorization filing, essentially what the company is asking the FDA to do is give authorization for the 2 doses of this series in anticipation that a 3rd dose will be needed.
और अब खबरें भारत से। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देश की वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को अब परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखे अपने वक्तव्य में कहा कि यह फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के कुछ महीने बाद यह फैसला आया है। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने 2018 में अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने अपनी पहली एकल उड़ान में MiG-21 बाइजन उड़ाया था। दूसरी तरफ भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या में अब कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में नए कोरोना मामलों में 3.4% की गिरावट देखी गई है। बुधवार को देश में कोविड के 161,386 मामले सामने आए और इस दौरान 1,733 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें केरल के बैकलॉग डेथ के 1,063 मामले भी शामिल हैं। भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 57,42,659 वैक्सीन की खुराकें भी बांटी गई हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.33 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। NFL का सबसे बड़ा सितारा माने जाने वाले टॉम ब्रेडी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 44 वर्षीय टैंपा बे बकानियर्स क्वार्टरबैक का करियर 21 वर्षों से भी लंबा है, जिसमें उन्होंने 6 सुपर बोल खिताब जीते हैं। पिछले सीजन में 20 साल के करियर के बाद वे टैंपा बे स्थानांतरित हो बुकानर्स को जीत के शिखर तक लेके गए थे। ब्रेडी ने अपने ट्विटर वक्तव्य में कहा कि फुटबॉल का खेल एक पूर्ण समर्पण मांगता है और उन्होंने अपने करियर का हर एक दिन वही देने की कोशिश की है। और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप ही धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी बादल छाए रहने की आशंका है, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप छांव का मौसम रहेगा, अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में हल्की फुल्की बौछार पड़ सकती है, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में देर शाम बरसात के बाद तूफान की आशंका है, यहां अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ बारिश की आशंका है, अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बरसात होगी, दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।